समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। हेलो, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम अलोंग लिसनर्स टू आवर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन चोपड़ा विद आकर्षिता टुडे, सो स्टे ट्यून्ड। वी विल फर्स्ट बिगिन विद द हेडलाइंस, आवर डिस्कशन सेगमेंट एट लाइन इंडिया, देन फॉलोज वी हैव रिपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, वेल एंड आवर ट्रिब्यूट्स, वी विल रिमेंबर द पर्सनालिटीज एंड वी विल गेट इंस्पायर्ड अगेन फ्रॉम देयर वर्क, फ्रॉम देयर आर्ट, फ्रॉम देयर क्राफ्ट, एंड ऑल ऑफ दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We are beginning with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi says inauguration of world's largest aircraft maintenance, repair and overhaul LEAP engine MRO facility at Hyderabad and induction of INS Mahe into the Indian Navy reflects India's new thinking, innovation and youth power.
आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, इसमें पिछले 10 वर्षों में 100 मिलियन टन की वृद्धि हुई।
इलेक्शन कमीशन रिवाइजेस शेड्यूल फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज।
दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की।
Cyclonic storm Ditwa likely to move northwards parallel to North Tamil Nadu Puducherry coast during 24 hours.
और रांची में भारत के साथ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है।
So with me and Akashita, we are together for our segment Dateline India, and today we'll be discussing about India's sporting renaissance, rising power in global sports. India's rising power in global sports, and Akashita, there is a new rhythm pulsing through India, a roar rising from stadiums, from streets and small towns alike, and this is the sound of a nation rediscovering its sporting soul. Well, long before modern arenas and flood-lit stadiums, India's identity was shaped by traditional games that built agility, teamwork and community spirit.
बरगद के पेड़ों के नीचे खेली जाने वाली कबड्डी, धूल भरे अखाड़ों में की जाने वाली कुश्ती,
yes.
गांव की गलियों में गूंजता गिल्ली डंडा और आदिवासी समुदायों द्वारा निपुण तीरंदाजी, ये प्राचीन खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे साहस के अनुष्ठान थे। और शगुन, अगर बात करें तो इतने ढेर सारे हमारे पारंपरिक खेल हैं, बहुत ढेर सारे हैं, और पता नहीं आपने नाम सुना होगा कि नहीं, आइस पाइस एक था जिसे हम हाइडेंसी खेल बोलते हैं अभी, और कुश्ती जैसे खेल, और अखाड़े, वो पुराने अखाड़े और गिल्ली डंडा, ये सब हमारी जो खेल ही नहीं थे, ये हमारी पहचान भी थे।
Yes, those times filled with fun and frolic. So, well, let's fast forward to today, and India is experiencing a sporting renaissance unlike any in its history. Well, from the electrifying triumphs in cricket, in badminton, to breakthrough performances in chess, in wrestling, hockey, athletics overall, Indians, they are stepping into global arenas with extraordinary confidence.
रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
एक राष्ट्र जो कभी लोकप्रिय कलाकारों के लिए जाना जाता था, अब विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के दमखम के बल पर दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। चाहे वो नीरज चोपड़ा का स्वर्णिम भाला हो, पीवी सिंधु की लोकप्रियता हो या फिर भारतीय फुटबॉल टीम का खेल के मैदान में नई आशा भरना हो, ये सब कुछ बहुत प्रेरणादायी है शगुन।
अरे राइटली सेड आकर्षिता। वेल नीरज चोपड़ा एंड वी टॉक अबाउट साइना नेहवाल, सो मेनी नेम्स। नवंबर 2025, लेट्स फोकस ऑन नवंबर 2025, हैज टर्न्ड इनटू अ ब्लॉकबस्टर मंथ फॉर इंडियन स्पोर्ट्स एंड मिस्टर मोदी कॉल्स इट नथिंग लेस देन सुपर हिट। Well, the excitement began with the historic triumph, the Indian women's cricket team lifting the ICC Women's World Cup, ODI World Cup, filling every home with joy.
इसके तुरंत बाद ही भारत ने वैश्विक मंच पर फिर से धूम मचा दी। हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो बधिर ओलंपिक्स में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 पदक जीते, लेकिन जीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। भारत की बेटियों ने कबड्डी विश्व कप में इतिहास रच दिया। हमारे मुक्केबाजों ने भी विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में 20 पदक जीतकर जोरदार प्रदर्शन किया।
सो मेनी अचीवमेंट्स एंड एडिंग टू दिस गोल्डन रन आकर्षिता, द विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम रिमेन्ड अनडिफीटेड एंड क्लेम द वर्ल्ड कप अगेन, अ विक्ट्री द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट्स।
खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। ये उपलब्धियां देश की है, देशवासियों की है।
Well, yes, Prime Minister Narendra Modi telling us that, and alongside these achievements, a new fitness wave, it is sweeping across India. Well, what was once niche, marathons, bikethons, endurance challenges, is now a national movement. So, more than 1,500 endurance events take place every month, showing how deeply sports is becoming a part of everyday life, and it should be.
ये जीतें, ये बदलाव, ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, सशक्त और उभरते भारत का प्रतिबिंब है
जी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव श्री जय शाह ने महिला क्रिकेट में समान वेतन लागू करने के कदम की सराहना करते हुए इसे समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
एंड इट मोटिवेट्स यंग वुमेन टू परस्यू स्पोर्ट्स सीरियसली, showing that talent and of course and dedication, they are valued and rewarded equally. This initiative is strengthening India's women's teams and boosting the country's global sporting stature.
पेरेंट्स को एक बेटा और बेटी होता है तो सब अपने बेटे को विराट और रोहित बनाना चाहते हैं, कोई हरमन और स्मृति बनाना नहीं चाहता। ये प्रायोरिटी इसलिए किया कि सब अपनी बेटी को हरमन और स्मृति बनाए।
वाओ,
2025 में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो एक खेल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। टोक्यो में हुए डेफलिंपिक्स में से लेकर विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल तक भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। अवनी लेखरा, मीराबाई चानू, लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी और हमारे पैराशूटरों ने भी ये साबित कर दिया शगुन की समर्पण की कोई सीमा नहीं होती, और पूरा देश इन पे बहुत ज्यादा गौरवान्वित भी हुआ।
एंड आकर्षिता, दीज विक्ट्रीज, दे आर मोर देन मेडल्स, दे आर अ क्लैरियन कॉल टू एवरी यंग इंडियन एंड देयर फैमिलीज। वेल, स्पोर्ट्स आर एज वाइटल एज एकेडेमिक्स, नर्चरिंग डिसिप्लिन, करेज एंड ऑल्सो रेजिलियंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडियन आर्चर्स, बॉक्सर्स, एथलीट्स, polo players and these teams, they made the country proud, securing medals in respectively ISSF Junior World Cup, Asian Archery Championships, World Games, Cognivara International Polo Cup, and also ISTAAF Sepak Takraw World Cup. And these victories, well, they are more than medals.
भारत ने न केवल प्रतिभा बल्कि अपने दृढ़ संकल्प के बल पर भी वैश्विक मंच पर अग्रणी है, और ये दर्शाता है कि जब बच्चों को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो राष्ट्र और भी उज्जवल हो जाता है। हर माता पिता और महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए ये बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और ये विश्वास करने का समय है कि एक रैकेट, एक गेंद या एक ट्रैक, एक चैंपियन और एक मजबूत भारत के निर्माण में एक खिताब जितना ही शक्तिशाली हो सकता है।
चिंगारी सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।
Well, yes. And now if I talk about yoga as well, India is not just reviving its ancient tradition, yoga. Our ancient tradition, it's turning it into a modern sporting powerhouse, Akashita. And the latest events, they show how. Let's reflect on that. At the 2025 Second Asian Yogasan Sport Championship 2025, well, in New Delhi, the Indian contingent absolutely dominated, winning a record-setting 83 gold medals, which are part of a total haul of 87 medals, and leaving all other competing nations far behind. Akashita, 83 medals, gold medals, and 87 overall. This surge is part of a larger renaissance.
और शगुन ऐसे ही नहीं, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि योग में भी विश्व गुरु है भारत. और भारत योग जैसे पारंपरिक खेलों को शामिल करते हुए खेलों की नई परिकल्पना स्थापित कर रहा है. शारीरिक फिटनेस को सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक पहुंच के साथ जोड़ रहा है और योग को एक प्रतिस्पर्धी खेल में देश अगली जो है बदलकर एक बड़ी जीत हासिल करके भारत दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि योग केवल एक स्वास्थ्य अनुष्ठान नहीं है बल्कि खिलाड़ियों की उत्कृष्टता, राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी क्षेत्र है. और ये सही बात है जो है शगुन, क्योंकि जो योग है वो सिर्फ और सिर्फ एक खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है. हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है योग.
यस, इट शुड बी प्रैक्टिस डेली एज पर मी. एंड इंडिया is rapidly emerging as a powerhouse in the world of sports, not just through its athletes, but also as a premier host of international events. So over the past couple of years, the country has proudly staged the Khelo India Para Games 2025. This happened in New Delhi, and then welcomed top young talent at the ISSF Junior World Cup 2025. And, well, yes, secured the prestigious Commonwealth Games 2013 in Ahmedabad, marking India's place on the global multi-sport map.
जी हाँ, पैरा एथलीटों से लेकर जूनियर चैंपियन तक भारत हर स्तर की प्रतिभा के लिए अवसर पैदा कर रहा है, जिससे ये साबित होता है कि देश अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए मंच तैयार कर रहा है.
वेल, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडवीय सेड द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स डिसीजन टू अवार्ड द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स टू अहमदाबाद, इट इज अ प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर द कंट्री एज इट स्ट्राइव्स टू बिकम अ स्पोर्टिंग पावर हाउस बाय 2047.
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स काउंसिल की जनरल असेंबली ने भारत को 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित करने के लिए औपचारिक घोषणा करी है. ये देश के लिए गौरव की बात है. मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में हम इंटरनेशनल लेवल के 22 बड़ी गेम्स देश के 18 सिटी में कर चुके हैं. ये भारत की बड़ी स्पोर्ट्स, बड़ी गेम्स का आयोजन करने की क्षमता को दर्शित करते हैं. स्पोर्ट्स इंडियन सिटीजन का नेचर है. स्पोर्ट्स देश में आगे बढ़ रहा है. ये बदलता भारत है. अभी हम वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड टूर्नामेंट का आयोजन भी कर रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते भी हैं. आने वाले दिनों में हम स्पोर्ट्स सेक्टर में और आगे बढ़ेंगे और 2036 में भारत मेडल टैली में 1 से 10 क्रम में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे. और 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हम दुनिया में 1 से 5 रैंक में आके रहेंगे.
तो शगुन, अब हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक खेलों में भारत की कहानी अभी शुरू ही हुई है.
ओ, कोई तो चल से फड़िए तू बेतरिए या मरिए, कोई तो चल से फड़िए तू बेतरिए या मरिए.
Question actually has shifted from possibility to potential. How far can this renaissance truly fly? India's surge in global sports is inevitable now. How far it can go is a story which is still being written.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. आइए चलते हैं राज्य की ओर. झारखंड के नौजवानों को अब पायलट बनने के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में राज्य के पहले फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान देने की पहल की शुरुआत की है. ये शुरुआत झारखंड के युवाओं के लिए सिर्फ करियर का अवसर नहीं है बल्कि उड़ान भरते झारखंड की नई पहचान है. अब आसमान भी झारखंड के सपनों की सीमा नहीं बल्कि उनका गंतव्य होगा.
झारखंड की उपराजधानी दुमका में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ न केवल एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि राज्य के युवाओं को आसमान में उड़ान भरने का एक ऐतिहासिक कदम भी है। दुमका एयरफील्ड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ करते हुए कहा कि झारखंड अपने युवाओं को सिर्फ सपने देखने का नहीं बल्कि उन्हें साकार करने का रास्ता दे रहा है। राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित दिशा दे रही है।
हम लोग एक नए जोश नए उमंग के साथ अब इस राज्य को अपने युवा ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का काम प्रारंभ कर दिया है। लगभग 17 साल इस संस्था को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखा गया था। आज ये संस्था सिर्फ इस राज्य नहीं पूरे दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी परिकल्पना रही है क्योंकि ये राज्य बहुत गरीब पिछड़ा है लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हर चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को राज्य सरकार खुद संचालित करेगी। यहां 30 योग छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनमें 15 सीटें आरक्षित श्रेणी के लिए तय की गई हैं। आरक्षित वर्ग के छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं ला रही, हम युवाओं का भविष्य भी गढ़ रहे हैं।
आज यहाँ का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। इस संस्था के द्वारा लगभग 30 नौजवानों को पायलट का ट्रेनिंग देंगे और उसमें से 15 नौजवान पूरा उसका जो आर्थिक बोझ है वो राज्य सरकार उठाएगी और उसको पायलट बना करके ट्रेन करके अपने पैरों पर खड़ा करे। सिर्फ यही नहीं, हम अपने नौजवान छात्र छात्राओं को देश नहीं विदेश भी भेजने का काम करते हैं। हर साल करोड़ों रुपया खर्च करके 25 नौजवानों को देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं।
दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में पूरी ट्रेनिंग 200 घंटे की होगी और इसे देश के प्रतिष्ठित सिविल एविएटर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवा न सिर्फ कमर्शियल पायलट बनेंगे बल्कि बड़े एयरबस विमान उड़ाने की भी योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए दुमका में प्रशिक्षण के लिए 3 जेलिन एयरक्राफ्ट, 3 ग्लाइडर और 1 स्टीमिया एयरक्राफ्ट की व्यवस्था पहले से मौजूद है। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की सुगमता के लिए सारे बुनियादी ढांचे तैयार कर लिए गए हैं। परिक्रमा के लिए रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
नागपुर में हाल ही में आयोजित एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर में स्वच्छ पौधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से बीते 16 साल से नागपुर में आयोजित किए जा रहे एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने संतरे की खेती करने वाले किसानों को अच्छे पौधे प्राप्त हो इसलिए नागपुर में स्वच्छ पौधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इस स्वच्छ पौधा केंद्र के जरिए किसानों को स्वस्थ पौधे बांटे जाएंगे ऐसा उन्होंने बताया।
लेकिन ऑरेंज में और उत्पादकता बढ़े इसलिए जरूरी है क्लीन प्लांट। हमको अच्छे पौधे चाहिए। नितिन जी बिल्कुल सही कहा। अच्छे पौधे के लिए अब हमने फैसला किया है क्लीन प्लांट सेंटर नागपुर में प्रारंभ किया जाएगा ऑरेंज का संतरे का और उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे।
इसके अलावा लैब टू लैंड के लिए केंद्र सरकार वैज्ञानिक गतिविधियों को लागू कर रही है ऐसा भी उन्होंने बताया। कार्यक्रम की शुरुआत में मार्गदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से किसानों को पानी और खाद का सही इस्तेमाल कर आमदनी बढ़ाने की सलाह दी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ हेमांगी कुलकर्णी।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। रांची में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने 43वें ओवर में 5 विकेट पर 277 रन बना लिए हैं।
एंड विराट कोहली लिट अप द इनिंग्स विद अ सुपर्ब सेंचुरी ऑफ 102 बॉल्स रजिस्टरिंग हिज 52nd वनडे इंटरनेशनल 100 एंड विद दिस नॉक विराट कोहली सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन अ सिंगल फॉर्मेट इन इंटरनेशनल क्रिकेट।
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज की इस कड़ी में हम देशभक्त पजहसी राजा को याद करते हैं जो 30 नवंबर 1805 को शहीद हो गए थे। वे 1774 और 1805 के बीच केरल के मलाबार क्षेत्र में कोट्टायम राज्य के वास्तविक प्रमुख थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। वो अपने मार्शल कारनामों के कारण केरल सिंघम के रूप में लोकप्रिय हैं।
1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोट्टायम क्षेत्र का नियंत्रण हासिल कर लिया और राजा के सिंहासन के दावे को दरकिनार करते हुए उनके चाचा वीरा वर्मा को कोट्टायम के राजा के रूप में नियुक्त किया। वीरा वर्मा ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाया। हमेशा से कंपनी के शासन के विरोधी रहे 1793 में इस आर्थिक शोषण के खिलाफ किसान जन प्रतिरोध का नेतृत्व किया।
1796 में कंपनी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया जिससे 1797 में अंग्रेजों को शांति के लिए मजबूर होना पड़ा।
1805 में अंग्रेज आखिरकार राजा की सेना को वश में कर पाए, लेकिन राजा ने अंग्रेजों के हाथों में पड़ने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लिया।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित को भी याद करते हैं। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदी पत्रिका प्रभा में गेंदालाल की जीवनी लिखी थी।
उत्तर प्रदेश में जन्मे गेंदालाल पेशे से शिक्षक थे। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और बाल गंगाधर तिलक के लेखन से प्रेरित होकर गेंदालाल ने नौकरी से छुट्टी ले ली और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते पास की रियासत ग्वालियर चले गए।
वहां उन्होंने शिवाजी समिति की स्थापना की। गेंदालाल ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग किया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिस्मिल के संगठन मातृवेदी के संचालन और विस्तार में मदद की।
गेंदालाल को 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पहले आगरा किले और बाद में मैनपुरी में कैद किया गया। वे जेल से भागने में सफल रहे, लेकिन तपेदिक से पीड़ित होने के बाद 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान क्रांतिकारी को सलाम करते हैं।
आज हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दौर के नेता रोमेश चंद्र दत्त को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 को हुई थी। दत्त एक उदारवादी थे, लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचनाओं के जरिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सुरेंद्रनाथ टैगोर के बाद ICS परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय रोमेश चंद्र दत्त थे। रोमेश चंद्र दत्त ने प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीयों की अधिक भागीदारी का सुझाव दिया।
उन्होंने इंग्लैंड में भारत के पक्ष में राय बनाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दत्त ने अपने 3 प्रकाशनों में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की थी। दत्त ने 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
Today, we are also remembering the founder of modern science, Sir Jagdish Chandra Bose. Well, a pioneer in wireless communication, revolutionized science with groundbreaking work in radio waves and plant physiology. Well, he showed the world that science has a heartbeat, revealing the silent, unseen life within nature with unmatched brilliance and sensitivity. His imagination and courage opened pathways few had ever dared to explore.
उन्हें रेडियो विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है और उन्होंने साबित किया था कि पौधों में भी जीवन होता है और वे बाहरी उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसका अर्थ हुआ शगुन कि उनमें भी जान होता है पौधों में और वो भी उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं।
एंड दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ मिनट रिस्पॉन्सेज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
आज प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका वाणी जयराम की जयंती है। उन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। संगीत में उन्होंने ठुमरी, गजल और भजन स्वर सीखे और साल 1969 में अपना पहला म्यूजिक शो किया। वाणी जयराम को सबसे बड़ा ब्रेक साल 1971 में गुड्डी से मिला। साल 1971 में से अपने 50 साल के करियर में वाणी जयराम ने 19 से अधिक भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
Yes, we are bringing the great voice of Mani Jayaram, well, to the whole wide world. One of the greatest singers with an impeccable sound, style of singing and pronunciation. And she has the unique ability to sing in a multitude of languages with complete ease.
तीन बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज भारतीय पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुधा मल्होत्रा का जन्मदिन है। उन्होंने बहुत कम समय में ही शोहरत हासिल कर ली। उनके गाए हुए गाने आज भी दर्शकों की पसंदीदा गानों में से एक हैं। उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में 1950 और 1960 के दशक में कुछ लोकप्रिय हिंदी फिल्मों जैसे आरजू, धूल का फूल, दीदी, काला पानी, बरसात की रात, अब दिल्ली दूर नहीं में काम किया। आखिरी बार उन्हें 1982 में राज कपूर की फिल्म प्रेम रो के गीत ये प्यार था या कुछ और था में सुना गया था। हिंदी गीतों के अलावा सुधा ने कई लोकप्रिय मराठी गीतों को भी गाया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
Well, Sudha Malhotra gained her grooming in Indian classical music under the guidance of Ustad Abdul Rahman Khan and Pandit Lakshman Prasad Jaipurwale. Well, she began her music career at a tender age of 5 with her enrapturing beauty and melodious voice. Well, she chiseled out her career to perfection even as a child artist then.
सुधा मल्होत्रा को 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आज ही प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री गीता बाली की जयंती है। उन्होंने 1930 और 1965 के बीच हिंदी सिनेमा में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी और सहाग रात जैसी फिल्मों से उन्हें सफलता मिली थी। वे अभिनेता शम्मी कपूर की पत्नी भी थी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले।
Well, when she was only 12, she started off her career as a child actor in Cobbler, and just a few years later, she made her debut in Badnami. She acted in 70 films over a 10-year career and quickly rose to fame in the late 1940s as well as 1950s. So, given how she acted in a range of genres, whether it is tragedy, drama or comedy, she never fell into the trap of a typecast.
और उन्होंने बावरी नैन, अलबेला, बाजी और वचन जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में भी अभिनय किया।
Well, yes, apart from her captivating on-screen presence, Geeta Bali, well, she was a talented, lively dancer as well, classically trained as a child.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता सिंह और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
एंड वी ऑल्सो थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।